प्राण प्रिय बाबा के केवल एक इशारे पर ही ब्रह्मावत सपना सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर देते हैं। इस मधुबन व संपूर्ण भारत को सतयुगी सृष्टि हेतु मणियों से सजा देने के लिए ऐसे ही अनमोल रत्न चंदन की शीतलता धारण किए मधुर वाणी के धनी बाप दादा के हर बोल को आत्मसात कर प्रैक्टिकल में कर दिखाने वाले यज्ञ के मजबूत स्तंभ जनप्रिय हृदय प्रिय और रमणीक आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी आज हमारे साथ हैं। हम सभी एक हाथ की ताली बजाकर भाई साहब का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता जी का जन्म स्थान पंजाब के ऐतिहासिक शहर अमृतसर में 1934 में हुआ। कुशाग्र बुद्धि के धनी भ्राता जी जब 1955 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहे थे तो बाबा ने अपनी ज्ञान गंगा में आपको स्नान कराया और बस वही एक डुबकी थी जो अटूट निश्चय के रूप में बदल गई और आज अनेकों को गंगा स्नान कराने के निमित्त बनी। आपका सन 1973 में परमात्मा यज्ञ हेतु नौकरी से त्याग पत्र देकर पूर्णतया भगवान के यज्ञ में समर्पित हो आपने भगवान का राइट हैंड बनने का निर्णय किया। तब से लेकर अब तक अनवरत यज्ञ सेवा में दधीची ऋषि मिसल हड्डी सेवा कर बाप का नाम बाला कर रहे हैं। चाहे आप तक पहुंचने वाली पत्रिका प्योरिटी का एडिटर स्वरूप हो या फिर देश विदेश में मुख्य प्रवक्ता के रूप में सेवा संपादित करनी हो, आप बखूबी से पूर्ण करते हैं। वर्तमान में आप पॉलिटिकल विंग के चेयरपर्सन हैं और आज हम भ्राता जी से साकार बाबा के बीते दिनों की स्मृतियां सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट है। बाबा कहते हैं जिसका जो पार्ट है उसके लिए वही बहुत अच्छा है। हमारा ये पार्ट था, हम बाबा के समय में आए। आपका ये पार्ट है, आप बाबा के समय के बाद आए। दोनों ही अच्छे, हम इसी में खुश रहना चाहिए कि जो तूने दिया उसी में मेरा कल्याण है। हमसे कई भाई बहन पूछते हम पहले क्यों नहीं आ गए। हमने कहा भाई जो ड्रामा है, नहीं हम पहले आ जाते तो मैंने कहा फिर क्या होता, शायद तुम भाग जाते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि उस समय तो थोड़े से थे, बैज लगाओ तो लोग ताना मारते थे। अब तो इतने बीके हैं तो लोग डरते हैं बीके के बारे में कुछ बोलने के। इसलिए हर चीज में कल्याण है। तो आज हम आपको कुछ याद करके कि बाबा के साथ हमारे क्या क्या पालना मिली, क्या क्या स्मृतियां हैं, जो भी याद आएंगी आपको सुनाते हैं। असलियत ये है, बिल्कुल पक्की असलियत ये है कि जब मैं अपने माता पिता के द्वारा ज्ञान के संपर्क में आया था तो ना तो मेरे ख्वाबो ख्याल में था, ना मेरी कोई इच्छा थी कि मैं इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संस्था में आऊंगा और पूरा ब्रह्मा कुमार बन जाऊंगा, बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी। अब देखिए बाबा की कमाल के, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आया कैसे। लॉ कॉलेज में मैं पढ़ता था, पिताजी मेरे ज्ञान में जाने लगे, उनको इतना अच्छा लगा कि आखिर रोज घर में सबको बिठाकर आधा घंटा लेक्चर करते थे, आज ये हुआ वो हुआ, अब पिताजी के कारण हम सुनते रहते थे। एक दिन मेरी माताजी को किसी ने कह दिया कि अब तेरा पति गया, किसी काम का नहीं रहेगा, बच्चों को छोड़ जाएगा और तुम संभालो। अब माताजी ने मुझे कहा कि तुम बड़े बेटे हो, लॉ पढ़ते हो, जाओ जाके देखो क्या है। इस प्रकार से मैं ब्रह्मा कुमारी में आया। अब मैं आ गया तो उन्होंने कहा आपको कोर्स करवाते हैं। मैं तो चाहता ही था कुछ करवाएं। तो एक आनंद किशोर भाई थे, मैंने कहा भाई कोई बहन से नहीं करूंगा, मुझे शर्म आती है, कोई भाई दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरे कैसे सुनूंगा, क्या क्वेश्चन करूंगा। वो आनंद किशोर जी मुझे हफ्ता भर समझाते रहे। अब जैसे कोई जाट होता है वो कह देता दूध काला है, तो कहेंगे तू हार जाएगा, कहता मानूंगा तो हारूंगा ना, है ही काला। अच्छा, तो मुझे वो जो कहते थे मैं उसका उल्टा कर देता था। उन्होंने कहा कि मैं आत्मा मेरा शरीर, मैंने कहा नहीं मैं शरीर मेरी आत्मा, करो बात क्या करते हो रोज ही। अच्छा, दो तीन दिन में वो तंग आ गए। अगर मेरे पिताजी बीच में ना होते, वो बड़े पक्के वर्मा कुमार थे, तो मुझे कहते जाओ भाई, नहीं दिल करता जाओ, हमारा सिर क्यों खाते हो। अब वो ना भी नहीं कर सकते थे, जो कहें मैं उसका उल्टा कर दूं। वकालत में तो यही होता है, जिसका केस ले लो उस तरफ चलो। ऐसा होता रहा। एक दिन, पांच छह दिन हो गए, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, एक यहां बुजुर्ग माता है, वो योग बहुत अच्छा सिखाती है और इतनी वो इतने सालों से शुरू से ज्ञान में आई थी तो उसके सिक्के भी भूल गए, दो आना का सिक्का कौन सा है, चार आना का, इतनी पहुंची हुई है, तो क्या आप उससे योग सीख सकते हैं। मैंने कहा सिखा दो, वो भी सिखा दो। तो अगले दिन मैं योग सीखने चला गया, धरती पर बैठ गया, वो सामने बैठ गई माता जी, उनका नाम कमल सुंदरी था, कईयों ने शायद देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध योगी थी। तो उन्होंने मेरे को बिठा के मेरी तारीफ करनी शुरू की कि तुम बड़ी शुद्ध आत्मा हो, बहुत अच्छे। मैं अंदर से मुस्करा रहा था कि मैं कॉलेज का लड़का, बाहर से खाना खा के आ जाऊं, माता मेरी जूते उतारे और ये कह रही है बहुत अच्छा आत्मा, मुझे फ्लैटर कर रही है। अंदर में मैं ये सोच रहा था। इतने में क्या हुआ, उनका फोन आ गया, तो आपने कमला नगर का पुराना सेंटर नहीं देखा, नीचे भी किराएदार, ऊपर भी किराएदार, जहां सेंटर है उसके बीच में भी एक किराएदार, तो उस तरफ उनका रहना था और इधर एक हॉल था। तो बोली कि अच्छा मैं फोन सुन के आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बैठा था, उन्होंने मुझे एक शब्द योग का नहीं सिखाया था, अभी शुरू होना था। इतने में मैंने क्या देखा, वो तो चली गई और वहां एक रोशनदान था। यहाँ तो शायद रोशनदान है, आजकल इंडिया में रोशनदान खत्म हो गए है ना। तो उसमें से एक बड़ी लाइट सी निकली, भाप जैसे होती है, बीम की तरह वो आई और उसने चारों तरफ से मुझे घेर लिया और मुझे कुछ हल्कापन भी महसूस होने लगा। मैंने कहा ये क्या है। मैंने अपने आप को टटोला, मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक था, आंखें भी मेरी खुली थी। तो मैंने सोचा इनके अंदर कोई शक्ति है, नहीं तो अभी तो मैंने योग भी नहीं सीखा, रोज मैं इनसे लड़ता हूँ, ये क्या है। तो मेरे मन में आया कि हो सकता है भाई ठीक हो, तुम इनसे रोज झगड़ा करते हो, आज ये फैसला करो जो ये कहेंगे उसको अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करूंगा। वो बहन जी आ गई, उन्होंने मुझे योग सिखाया, मैंने शांति से सुना, एक सवाल नहीं पूछा, चला गया। अगले दिन मैंने कहा जी उस भाई को कहो मुझे दोबारा कोर्स कराए, वो बड़े खुश हो गए। अब भाई जी कोर्स कराने लगे तो मैंने उसका अपोजिशन नहीं किया, तो मैंने मन में धारा कि अगर एक भी मेरी इनकी पॉइंट मेरी समझ में आ गई पक्की तरह तो मैं इनकी और बातें सुनूंगा। लो जी वो सुनाने लगे। आखिरकार उन्होंने एक दिन सुनाया, दूसरे के दिन, मनुष्य आत्मा पशु योनियों में नहीं जाती। मैं तो लॉ का स्टूडेंट था, मैंने बड़ा सोचा तो मैंने कहा ये तो बात इनकी बड़ी अच्छी और खुशखबरी की कि हम बिच्छू नहीं बनेंगे, छिपकली नहीं बनेंगे। मैंने और सोचा उसको, फिर मैंने कहा ज्योतिषियों वगैरह के पढ़े हर व्यक्ति का बताते हैं पिछले जन्म में ये फलाने घर में था और कई बातें जोड़ जाड़ के मैंने मान लिया कि मनुष्य आत्मा और कुछ हो ना हो 84 लाख योनियों में नहीं जाती। तो फिर मैंने कहा अच्छा मुझे और सिखाओ, और घर आके मैंने माता जी को कहा ये ठीक जगह जाते हैं, वो पूछती रहती थी। इस तरह मैं ज्ञान में आ गया। बच्चा था मेरा ख्याल 20 साल की उम्र थी जब मैं लाओ में पढ़ता था। अच्छा, उसके बाद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी थी। उन दिनों हम ब्रह्मा बाबा के पास आए तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने बताया तो उसकी वंडरफुल बात देखिए कि मेरे पिताजी को बहुत शौक था ज्ञान का, अविनाश आना है, तो उन्होंने कहा बाबा मैं तो चाहता हूँ अपना काम धंधा छोड़ के ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो बाबा ने कहा तेरा परिवार है, तुम ईश्वरी सेवा भी करो ये भी करो। मेरा एक छोटा भाई था 2 साल छोटा, वो कॉलेज में पढ़ता था, उसको बाबा ने कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो और ईश्वरी सेवा में लग जाओ। अच्छा, मुझे कहा तुम पढ़ाई पूरी कर लो। तो मेरी माता जी को कहा कि तुम तीर्थ स्थान में जाके सेंटर खोलो, तुम्हारा मोह हट जाएगा। तो मेरे पिताजी ने वहां मथुरा में उनको सेंटर खोल के दिया और शरीर छोड़ने तक वही रही। अच्छा, अब सोचो कि भाई को कह रहे हैं तुम पढ़ना छोड़ दो, बाद में हमने देखा कि 2-3 साल बाद भाई ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, बाबा को पता होगा, उसने उन दिनों में इतनी इम्पोर्टेंट सेवा कर ली जो कि उसका सफल हो गया। मुझे आज तक जीना था, मुझे कहा तू पढ़ाई पूरी कर ले, सोचने की बात है, बाद में पता लगता। अच्छा, उसके बाद हमने देखा, हम तो बच्चे थे पर हमारी जीवन जैसे ऊपर से बाबा कंट्रोल कर रहा। मैंने इम्तिहान पास कर लिया और करके जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, दिल्ली का बहुत बिजनेस सेंटर है सदर बाजार, वहां मैंने कमरा लेके प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। कुछ 8-10 महीने बाद मैं मधु बन गया तो बाबा ने पूछा बच्चा तुमने इम्तिहान पास कर लिया? तो इम्तिहान बड़ा मुश्किल होता था पर मैंने कर लिया। तो मैं दादी प्रकाशमणि दिल्ली में हमारी टीचर थी, उनसे दृष्टि लेके जाता था तो मेरा फोकस हो गया, कर लिया। मैंने कहा हाँ जी, और बड़ी फखर से मैंने कहा बाबा मैंने दिल्ली के सदर बाजार में ऑफिस खोला है, बड़ा बिजनेस एरिया है। बाबा मुस्कराए और बोले जरा और नजदीक आओ। अच्छा, मैं और नजदीक चला गया तो बोले कि तुम काहे को ये झूठ सच का धंधा करता है, इसमें झूठ बोलना पड़ता है, अकाउंट चेंज, तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो। अब बाबा थे, उनको देखा वैसे ही ग्रैंडफादर की तरह चमकीला उनका शरीर, क्या उनका प्रभावशाली सारा, क्या उनका प्यार। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब आज मैं देखता हूं कि बाबा कहते हैं कि कोई सारी जिंदगी में एक बार भी मेरा कहना मान ले, एक बार भी किसी अच्छी बड़ी बात में, तो मैं जिंदगी भर उसको मदद करने के लिए बंधा हुआ। ये मेरा आज का तजुर्बा है, इस बात को 50 साल हो गए। अच्छा, अब इसके प्रूफ क्या है? बाबा ने कहा तुम नौकरी कर लो, ठीक है। मैं वापस आके दिल्ली में अपने ऑफिस में गया ही नहीं सदर बाजार। मैंने अपने भाई को कहा सब किताबें कतूबे वापस कर दो, जो मेज कुर्सियां रजौरी गार्डन सेंटर बना था वहां दे दो, और मैंने नहीं अब ऑफिस जाना। पहली बार मैंने अखबार पढ़ा जहां नौकरियां लिखी होती, मुझे क्या पता। अच्छा, जो पहली नौकरी मुझे दिखी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, मैंने कहा ठीक है, और वो हाथ से लिखकर, मुझे ये भी नहीं पता था एप्लीकेशन टाइप करनी होती है, हाथ से लिखकर अर्जी मैंने भेज दी। वो थी भाकड़ा नंगल में, गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन रही थी। लो जी, मुझे इंटरव्यू भी आ गया क्योंकि पीछे बाबा है। अब जब मैं ट्रेन में पहली बार जिंदगी में ट्रेन में बैठकर दिल्ली से वहां गया तो मेरे डब्बे में 8 लड़के बैठे थे और सारे ही उस इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, और इंटरव्यू पोस्ट वहां बहुत थे, वो इतने होशियार थे, अंग्रेजी बोल रहे हैं, फटाफट आपस में बात कर रहे हैं। मैं कोने में दुबका हुआ बैठा था, मैं सोच रहा था अगर ये जा रहे हैं तो मेरे को कौन पूछेगा। बात भी ठीक थी, मैं उनसे बोला भी नहीं किसी से, चुपचाप बैठा रहा। अब वहां इंटरव्यू हुई, अब मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे और 5 सवाल में 4 में मुझे जवाब जो पता नहीं थे। मैं तो ब्रह्मा कुमार था, अपनी सेवा की, अच्छी तरह पढ़ाई करी, अच्छी तरह प्रैक्टिस करी, तो उन्होंने 5-4 में उनके सबके ऐसे सिर थे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 5वीं बार उन्होंने पूछा तुम तनख्वाह क्या लोगे, अब मुझे पता ही नहीं पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है। मैंने कहा जी जवाब दे देंगे। अच्छा, मैंने कहा जवाब दे देंगे। अच्छा, मैं सिलेक्ट हो गया, उनमें कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, अब सोचो ये कैसे हो गया। मैंने सचमुच वहां जाके पूछा कि मैंने खुद देखा था इतने होशियार लड़के, मैं कैसे सिलेक्ट हो गया। उन्होंने कहा जी सरकारी कंपनी है, नई नई बनी है, उनका असूल है कि जिसको भी रखना है सबसे मिनिमम तनख्वाह पर रखना। मुझे तो मिनिमम भी नहीं पता क्या था। अच्छा, तो उन्होंने सारे लड़कों ने, वो कोई दिल्ली से कोई नौकरियां करता था कोई, उन्होंने कहा इतने जंगल में कौन जाएगा, सरकार ज्यादा पैसे आप ही देगी, तो सबने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी। और उनका रूल था बेचारे क्या करते, तो मैंने कहा था जो मर्जी दे दोगे आपको रख लिया। लो जी, अब नौकरी किसने दिलाई आप सोचो। अब मेरी जो थी ना क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत अच्छी थी, सिर्फ ना तो मुझे अंग्रेजी बोलनी आती थी, पंजाबी अंग्रेजी, फिर उसके बाद झिझकता था मैं। अच्छा, अब इतना ही नहीं हुआ, उनको 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे, बहुत बड़ी कंपनी थी। तो 2 महीने बाद उन्होंने दोबारा एडवर्टाइज किया और नीचे की तनख्वाह बढ़ा दी ताकि लड़के जो आए मिनिमम में भी उनकी अच्छी तनख्वाह हो। मेरी आप ही बढ़ गई क्योंकि मैं तो अंदर था, अगर पहले होती तो मैं बाहर होता, समझा आपने। तो बाबा ने नौकरी भी दिलवा दी, तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब इससे आप क्या सोच सकते हैं, बिल्कुल बच्चा कुछ पता ही नहीं। अच्छा, अब इसके बाद मैं वहां 17 साल रहा, 1 साल 2 साल नहीं, 17 साल। बाबा ने मेरी हर काम में, मैं कुछ बोलता नहीं था, दूर बैठा था, पर मेरी मदद करता रहा। और 17 साल भी कैसे हुए कि हमारी कंपनी के हिंदुस्तान भर में फैक्ट्रियां खुली, बॉम्बे में, बिहार में, मथुरा, कई जगह खुली, असम में। तो वो कहते थे जो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है इनको भेज देते हैं दूसरी नई में, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी क्या कहते हैं इंसिडेंट्स, जिससे आपको पता लगेगा कि बाबा मदद कैसे करता। पहले नौकरी के बाद मैं और मेरी माता जी मधुबन में आए, तो मेरी शुरू से नेचर थी यज्ञ का कुछ पैसा बच जाए तो मैं हमेशा बस में आके, वहां से एक आदमी होता था वो रेडी पर सूटकेस रख लेता था, पिछले रास्ते से आता था, माता जी को भी ले आया। तो जाने से पहले मेरे माता जी बाबा जी से मिलने गए, तो बाबा ने कहा कब जा रही हो, कहा कल जा रहे हैं, कैसे जा रही हो, उसने कहा मेरा बेटा बस से ले जा रहा है। उन दिनों बस की टिकट 4 आने एडवांस देके बुक हो जाती थी। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बोला अरे तुम ऑफिसर है, तुम अपनी माँ को बस में ले जाता है, टैक्सी में लेके जाओ। अच्छा बाबा जी, अब मेरी माँ के ऊपर इतना इम्प्रेशन पड़ा कि इसको मैंने जन्म दिया, ये तो मुझे बस में ले जाता है, अब बाबा मुझे टैक्सी में भेज रहा है। तो बाबा इस प्रकार से समझो हर एक का दिल खुश करता था। यूं तो बाबा कहता है मुझे किसी के पैसे पूसे से, बिजनेस बिजनेस से कोई मतलब नहीं, मैं तो ज्ञान सुनाता हूं। लेकिन अपने बच्चों के साथ, अब मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पैसे बच जाते थे, क्योंकि मेरे घर में सेंटर था, वो सेंटर वाले चला देते थे, तो मैंने बाबा से कहा ये पैसे क्या करूं, यज्ञ में दे दूं। बाबा बोला नहीं रखो, इसको इन्वेस्ट कर दो। तो दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां थी, एक मेरा स्टाफ था उसका भाई ब्रोकर था, मैंने इन्वेस्ट कर दिया और बाबा को बताया कि ये कंपनियों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। तो एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका नाम था जयंती शिपिंग कंपनी। वो नेहरू जी की मदद से किसी 420 आदमी ने खोली थी कि जापान से हम शिप मंगाएंगे इंस्टॉलमेंट पे, और अनाज आता था वो हमारे, कंपनी अच्छी थी थादो के पास। कुछ दिन बाद मेरे ब्रोकर ने कहा, भाई साहब वो कंपनी ठीक नहीं है, बड़ी है, तो उसने मेरे पैसे निकलवा दिए। कुछ दिन बाद अखबार में आया कि वो कंपनी डूब गई है, तो बाबा ने पढ़ा अखबार, तो पहले पहले मुझे कहा, बच्चे तेरे वो पैसे का क्या हुआ, अब बताओ। आप समझ सकते हैं उसको इतना बाबा को फिक्र है। मैंने कहा, बाबा मैंने निकाल ली थी। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद और देखिए कि 17 साल बहुत होते हैं। कुछ समय बाद मुझे कंपनी वालों ने कहा, हमने आसाम में नई कंपनी खोलनी, आप वहां जाओगे? तो मैंने सोचा कि वहां कोई सेंटर नहीं है, बाबा भी कहते हैं नई जगह सेंटर खोलो। मैं बाबा से पूछा, बाबा बोले आसाम में, अरे वहां 9 महीने बारिश होती है, बड़ा बड़ा मच्छर होता है, हैं, नहीं जाना। मैंने कहा, भाई कमाल है, बाबा कह रहा नहीं जाना, ठीक है जी। दूसरी बार फिर एक और जगह रामागुंडम कोई है, वहां खुली। मैंने कहा, बाबा वो कहते हैं, बाबा बोले बाबा बाहर जाता है क्या? नहीं जाना बाबा, वहीं रहो। इस प्रकार से 17 साल में एक ही जगह रहा। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि मैं तो अपना काम फर्स्ट क्लास करता था और मुझे लेना देना नहीं कंपनी से। आप हैरान होंगे कि हम रोज कंपनी की बस में खाना खाने सारे ऑफिसर जाते थे। मैं बैठ के जाता था, मुझे ये नहीं पता होता था, कुछ का तो पता था ये ऑफिसर ये काम करता है। वो अंदर से आते थे टेक्निकल, कईयों का मुझे पता नहीं था, पर मैंने मन में धारा हुआ था ये ऑफिसर ये है। तो एक दिन बस में एक ऑफिसर मेरे साथ बैठा था, बोला मेरे इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट बना देना मेरा। मैंने आके ऑफिस से फौरन जो मैं समझा था वो है, उसका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनाया, चपरासी के पास भेज दिया। अगले दिन वो फिर आया, वो कहता है आपने वो भेजा नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जाके पूछा इसका नाम क्या, उसका नाम ही कुछ और था। ये मेरा हाल था, यानी आप समझ लो कि बिल्कुल कॉन्टेक्ट में। आपने कभी सोचा होगा कि कोई व्यक्ति 17 साल नौकरी करे, 10 साल फैक्ट्री में ही न जाए। मैं ऐसा व्यक्ति था, हमारा ऑफिस बाहर होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, काम बढ़िया करना है, 10 साल में फैक्ट्री के अंदर नहीं गया क्या होता है, क्योंकि मैं अपना काम करता था। एक बार उन्होंने कोई बिजली का कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव करना था, रिव्यू मुझे दे दिया, तो मुझे जाना पड़ा पूछने बिजली क्या होती है, लाइन लॉस, इस तरह का न्यारे बिल्कुल। तो इसलिए बस बाबा की सेवा करनी है। सर शुक्र से लेकर मंडे मॉर्निंग तक तो मैं बाहर ही रहता था। 52 हफ्ते में 48 हफ्ते बाहर सेवा कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हमारे इंटरव्यू होते थे अगली पोस्ट के लिए, तो फैक्ट्री के हर कंपनी, हर फैक्ट्री से दूसरे लोग आते थे। अब मैं काम वाम अच्छा करता और मुझे कुछ पता नहीं। उन्होंने इंटरव्यू किया, सिंदरी में कौन सी फर्टिलाइजर बनती है, क्या उसमें लगता है फलानी, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अपनी का भी नहीं पता। तो उन्होंने ना मेरा फेल कर दिया, मतलब मैं दिल्ली में इंटरव्यू हुआ, मेरे को लगा कि ये सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने मेरे लौकिक पिता ज्ञान में, मैं घर आया, बोले भोजन करो। मैंने कहा जी मेरा तो भूख नहीं है। कहते क्यों? मैंने कहा ऐसे ऐसे इंटरव्यू हो गया। कहते बाबा बैठा है ना। तो मैंने कहा बाबा ये थोड़ी कहते हैं मेरा नाम बदनाम कराओ, अब मेरा रिजल्ट आएगा और मेरे से छोटा मेरा ऑफिसर बन जाएगा फिर। बोले नहीं नहीं बाबा बैठा। अच्छा जी, मैं वापस जाके दिन गिनने लगा कि किस दिन वो इंटरव्यू का रिजल्ट आता और मेरे साथ ये होता है। लास्ट दिन ये आई इन्फॉर्मेशन कि इंटरव्यू का बोर्ड ठीक नहीं बना हुआ था, इसलिए सारा इंटरव्यू क्रैश, तो मैं बच गया। अब आप सोच सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि बाबा कहां तक करता। अच्छा, फिर और देखिए, एक बार मोहिनी बहन है ना यहां, वो मेरे सेंटर में रहती थी, तो मैं ऑफिस जाने से पहले दरिया के पार एक गीता पाठशाला थी, वहां उसको छोड़ जाता था, स्कूटर चलाता था और लंच के बाद उसको ले आता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मोहिनी बहन को भी हॉस्पिटल में दूसरे बेड पे पाया। और मेरा मुंह इतना सूजा हुआ, मुझे तो नहीं पता लोग आ गए। अब ऑफिसर आया एक, मेरा जो दोस्त था, कहता धीरे धीरे बोला, आप जा रहे थे स्कूटर पर, एक बुढ़िया थी आपके नीचे आ गई, बुढ़िया मर गई। मुझे कुछ पता नहीं, अभी तक भी नहीं पता कौन बुढ़िया थी। अच्छा, और आपका चोट लग गई है, मुंह सूजा हुआ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उधर देखा तो बहन जी भी पड़ी है। मैंने कहा बहन जी? कहती हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखते हैं एक्सीडेंट के केस को, हमारी कंपनी का अपना हॉस्पिटल था, वहां रख नहीं सकते। अच्छा जी, मुझे और किसी चीज का, सब चीजों को मैं ताकतवर हूं, शरीर के रोग में मुझे ऐसे लगता था शरीर का रोग आ गया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि बचपन में भी टीका लगाते थे तो मैं घर से भाग जाता था पकड़ के रो पीट के। तो मैंने कहा अब सूझ गया मुंह। अच्छा, लेकिन आप समझिए कि 13 दिन में वह हरा। डॉक्टर ने कहा अगर ब्रेन में इसका हेमरेज नहीं हुआ तो बच जाएगा। 13 दिन में मुझे एक दिन भी सिर दर्द जितनी भी तकलीफ नहीं हुई, ऊपर से किसी को कुछ लगे। डॉक्टर आता था, मैं कहता आओ डॉक्टर टीका लगाओ। 13वें दिन मैंने कहा डॉक्टर बड़ी दर्द होती है, टीका मत लगाना। ये हाल मेरा, क्योंकि मैं नॉर्मल हो गया। फिर अखबारों में निकल गया कि इसका एक्सीडेंट हो गया। जलंधर से अखबार छपते थे, मेरी माताजी ने कहीं पढ़ा तो मैं घर आ गया था। कहती है सुना है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में। मैंने कहा मैं घर से फोन कर रहा हूँ या हॉस्पिटल से, वो भी बच गया काम। तो इसलिए वो भी मैंने देखा कि बाबा आपको कितनी भी ऊपर से लगेगा, आपके मुंह सूजा हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल जो नॉर्मल होता उससे भी नहीं हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे कि बाबा बिल्कुल मदद करता रहा, हर बात में मदद करता रहा। कंपनी में मेरा नाम मशहूर हो गया, ये काम नहीं रखता, सारा दिन मैं यज्ञ की चिट्ठियां लिखवाता था, टेबल पे मेरे कुछ नहीं होता था। तो एक ऑफिसर ने कहा, हमारे 8 सेक्शन थे, उसने कहा इसका सेक्शन बदल दो, इसके पास कोई काम नहीं। बदल दिया, फिर भी मेरे कुछ नहीं काम था। अब क्या करें, वो सोचते थे पता नहीं ये काम करता नहीं। पर सिंपल बात ये थी कि ऑफिसर होता है ना, वो कहता है नीचे वाला कुछ लिख के लाए, मैं उसके ऊपर अपनी ज्यादा अकल दिखाऊं, फिर अपने बॉस के पास भेजूं। मैं कुछ नहीं करता था, मैं नीचे वाले को बुलाया, ये लिख ला, वो लिख लाता था, साइन किया, छुट्टी। तो इस तरह इजी था क्योंकि देह भान नहीं है। तो आखिरकार करते 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 बीच में मैं कई सेंटरों में गया। बाबा ने मुझे तैयार करना था सरेंडर होने के लिए, बाबा हो गया व्यक्त। अब मैं तो तैयार नहीं था, तो बाबा उन दिनों जैसे राजू भाई बता रहा था आते थे, कमरे में बैठते थे, काफी काफी घंटे हमसे मिलते थे। तो मैं गया। एक बात और बता दूं, बाबा को कैसे पता था ये क्या करता है। पांडव भवन आबू में से शाम को हम लोग लेक से घूमकर म्यूजियम में जाते थे सेवा करने। तो म्यूजियम में एक दिन मैं गया और वहां कोई भाई बैठे थे, मैं भी बैठ गया, वो कुछ बात कर रहे थे, मैं बैठा रहा। मैं आया, गेट पे आया, अव्यक्त बाबा कहते बाबा बुला रहा है। मैंने कहा भी पता नहीं क्या है। मैं गया, बाबा बोले तुम म्यूजियम गए थे। पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा यहाँ बैठा और क्या उसको पता है मैं म्यूजियम गया था। मैंने कहा हाँ जी। बोले बच्चे ऐसा है, तुम वहां बैठे थे ना लोगों के बीच में, तुमने कुछ बोला नहीं, पर जो भाई दूसरे को समझा रहा था वो कच्चा है और उसको ऐसी ऐसी बातें करने से उसकी अवस्था खराब होती है, और तुम बोले तो नहीं पर ध्यान रखना। अब मुझे बड़ी खुशी कि गया मैं, बात वहां कर रहा हूँ, बाबा को पता है मेरा कितना ध्यान रखता है। तो मुझे और भी पक्का हो गया कि देखो बाबा इतना ध्यान रखता है। अब क्या हुआ जी, बाबा हो गए अव्यक्त। तो अव्यक्त बाबा ने मुझे बुलाया और कहा बच्चे तुमने कोई आप समान बनाया। और मैंने समझा मेरा शरीर छूटने वाला है, क्योंकि बाबा कह रहा है आप समान बनाया तो गड़बड़ है कुछ, भगवान कह रहा है। अच्छा, अब जी मैंने बोला नहीं कुछ, बाबा कहता है जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है, ये भी बता दिया। अच्छा, फिर बोला बाबा देखो बच्चे, कभी इंसान तुम जाते हो सेंटरों में, कभी तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो, कुछ हो तो तुम दूसरे को आप समान बनाओ ताकि कभी तुम ना जा सको तो जाओ। बाबा का हमेशा असूल रहा है कि आप समान बनाओगे तो तुम और तरक्की करोगे, दूसरा संभालेगा। तो उसी वक्त बाबा के सामने बैठे मेरे दिमाग में दो चेहरे आए, एक अमीर चंद भाई का और एक लक्ष्मण भाई का, पंजाब के हैं दोनों। अमीर चंद भाई छोटा सा था, ट्रेड ऑफिसर था, और लक्ष्मण भाई नेता टाइप का था, वो एजुकेशन ऑफिसर था लेकिन जोर से भाषण करता था। मैंने कहा ठीक है, मैं दोनों को तैयार कर लूंगा। अगली बार जाके मैंने कोई प्रोग्राम होना, मैंने कहना भी मैं नहीं आ सकता, तुम जाना। हालांकि बाबा ने मेरा नाम उड़न खटोला रखा हुआ था, क्योंकि कहीं कुछ भी प्रोग्राम हो, पटना में हो, बॉम्बे में हो, मैं छुट्टी लेकर भी पहुंच जाता था। बाबा कहते थे इसकी सरकारी नौकरी है, पता नहीं इसने ऑफिसरों को कैसे हैंडल किया, वो आ जाते, पर मैं कर लेता था। तो मैं उनको भेजता रहा, एक को वहां एक को वहां। तो अगली बार जब मैं गया, फिर बाबा को मैंने कहा बाबा मैंने आप समान बना लिया, समझा, क्योंकि मैंने जाते थे। तो फिर बाबा ने कहा तुम ये बताओ, तुम नौकरी भी करते हो, ईश्वरी सेवा भी करते हो, तुमको दोनों में से क्या पसंद है, ईश्वरी सेवा फुल टाइम करना पसंद है या दोनों इकट्ठे करना पसंद है? मैंने सचमुच सोचा कि बाबा कह रहा है पर मुझे क्या तकलीफ है, सरकारी तनख्वाह मिल जाती है, कार मिली हुई है, कोठी मिली हुई है, और पैसे भी नहीं खर्च होते। मैं दफ्तर में 17 साल से ऊपर पूछता ही नहीं, ऑफिस जाओ ना जाओ, मैं तो ईश्वरी सेवा भी करता हूं। तो मैंने कहा बाबा मुझे दोनों ठीक है, एक बराबर है, सच्चे दिल से कहा। फिर बाबा कहता है 19-20 बताओ, अब बताओ 19-20 बताओ। अच्छा, फिर मैंने सोचा, फिर भी मेरे अंदर यही आया कि मुझे क्या तकलीफ है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मैंने कहा जी मेरे लिए बराबर ही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे पीछे एक गुजरात की स्कूल टीचर बहन बैठी थी, उसने बाबा से कहा स्पेशली कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी छोड़ के ना ईश्वरी सेवा में लग जाऊं। तो बाबा ने कहा देखो इसको मैंने पूछा, इसने क्या कहा, तो तुम भी ये समझो कि बाबा ने तुमको टीचर रखा हुआ है, जब बाबा को छुड़ाना होगा छुड़ा लेगा। अच्छा, उसके अगली बार फिर 2-3-4 महीने बाद मैं गया तो बाबा कहते हैं तुम कभी किसी सेंटर में रहे हो? मैंने कहा बाबा हाँ, मैंने 1 महीना छुट्टी लेकर दिल्ली के करोल बाग में म्यूजियम बना था, पूरा म्यूजियम बनाया था ऑलराउंडर दादी के अंडर, वहां मुरारजी देसाई आया था। बाबा कहता वो नहीं, वो तो मेहमान की तरह होता है, जाओ फल फ्रूट ले जाओ, आराम से रहो, ऑफिसर तुम हो, ऐसे नहीं, घर की तरह रहे। मैंने कहा जी मैं तो कभी रहा नहीं। तो बाबा बोले बच्चे जब ऐसे रहते हैं ना तो भाव स्वभाव का बड़ा टकराव होता है। तब भी मुझे पता नहीं कि मेरे को बाबा ये सरेंडर कराने वाला, कुछ पता नहीं। अच्छा जी हो गई बात पूरी, सुन लिया बाबा ने कहा जाओ, तैयार कर दिया उसने। अब मैं रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, लगन मुझे वहां थी नहीं, कभी आ सकती थी नहीं। आखिर दिल्ली में एक पांडव भवन लिया गया 1972 में, और उस वक्त 4.25 लाख का था वो, पर उस वक्त यज्ञ में 4.25 लाख भी इकट्ठे करना मुश्किल था, सबने मिलजुल के इकट्ठे करके लिया। तो उस वक्त दादियों ने मुझे कहा अरे हमने उस वक्त पहला ही मकान है जो ब्रह्मा कुमारी ने अपना लिया, नहीं तो बाबा कहता था किराए का मकान लो। आबू भी किराए का होता था, वो भी किसी ने, राजस्थान गवर्नमेंट अलग हुई तो किसी ने गेस्ट अपना बना लिया, सर्किट हाउस तो बाबा ने खरीदा। अच्छा लिया, तो बोली अरे बहुत बड़ा मकान लिया भाई, तो एक भाई चाहिए वहां। तब तक भाइयों के सरेंडर नहीं कराते थे, कोई खास काम हो लिटरेचर बनाना तो कराते थे। तो मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले तुम अपनी बदली दिल्ली में करा लो, क्योंकि दिल्ली में हमारी कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर था, वहां करा लो, वहां रहना, वहां काम होंगे। मैंने कहा बहन जी मैं दिल्ली में बदली करा लूं, यहां तो मैं 17 साल से हूं, 2 कागज साइन किए छुट्टी, वहां तो 8 कंपनियों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएंगे, मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे, सिर्फ सुबह से शाम तक मैं काम करूंगा, फिर छुट्टी भी नहीं ले सकता। अभी तो हरिद्वार भाग जा, लीव ले मेडिकल, तो वहां तो मेरी जिम्मेवारी है। और फिर साउथ दिल्ली में आपका हमारा हेडक्वार्टर है, करोल बाग में है, एक घंटा जाने में लगेगा, तो आपके किस काम का मैं रात को आऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, सुबह मुरली सुनी गया। तो फिर कहती क्या करना है। मैंने कहा जी अगर आप कहो बहुत नौकरी कर ली है, आप कहो तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि पैसे पूसे इकट्ठे हो जाते हैं, काम चलेगा। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। लो जी ये कह के कि मैं जाके रिजाइन करना है, वहां से मैं चला मधुबन से अपने शहर में आया। अब वहां क्या हुआ कि मेरे जहां जब वापस आते हैं अब घर में कुछ चिट्ठियां पड़ी होती हैं, तो मेरी ही कंपनी में टॉप का इंटरव्यू था, उसमें मेरा नाम था कि तुमने इंटरव्यू में तुम्हें बुलाया गया है। अब आप सोचो कि किसी व्यक्ति ने रिजाइन करना है, उसको इंटरव्यू क्या करना है, वो सोचेगा ठीक है जाना तो है छोड़ो। फिर भी मैंने मोहिनी बहन को कहा प्लीज बाबा से पूछ के आओ कि मुझे ये इंटरव्यू मैं तो नहीं चाहता करूं, मुझे तो रिजाइन करना है। अब वो आई तो कहती बाबा कहते तुमको करना है इंटरव्यू। अब मैंने कहा बाबा कहते इंटरव्यू करना है पर क्यों, जब मैंने रिजाइन ही करना है। मैंने कहा प्लीज एक बारी फिर पूछ के आओ। फिर पूछ के आई तो उसने बोली कि बाबा कहता है बच्चे को समझाओ कि जब नौकरी छोड़ भी देगा तो लोग पूछेंगे तेरी लास्ट पोस्ट क्या थी, अगर बड़ी होगी तो वो भी सर्विस करेगी। अब ये तो किसी के दिमाग में नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है बाबा कह रहा है। तो हम जी दिल्ली में लास्ट इंटरव्यू करने गए। अब देखो नौकरी दिलवाई कैसे थी, लास्ट या छुड़वाई कैसे। गए वहां तो वो बहुत बड़ी पोस्ट थी, तो इंटरव्यू में भी तीन कंपनियों के जनरल मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, गवर्नमेंट का एक ऑफिसर सब आए हुए थे। और जैसा ड्रामा में था पहला नंबर मेरा ही आ गया कि आपको बुला रहे हैं। अब मुझे कोई भय भूत तो था नहीं, छोड़नी है नौकरी। तो मैं गया तो कहते हैं आपका रिकॉर्ड तो अच्छा है पर आप 17 साल एक ही जगह रहे हैं, अगर हम अब आपको प्रमोशन देंगे तो आपको कहीं जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी आपको पता है सबको मेरे घर में ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं और मेरे तो हालात सेम है। ऐसे करके मैंने गोलमोल जवाब दिया। इतने में उस चेयरमैन का फोन बजा के तुझे मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर। तो कहते मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू का क्या करें। बोला करते रहो मैं जल्दी आ जाऊंगा। वो चला गया जी। ये सारे रिलैक्स हो गए। अब सुनिए क्या कहते हैं। कहते हैं आपकी हॉबीज क्या हैं। वो इंटरव्यू खत्म। अच्छा मैंने कहा जी मैंने सोचा हॉबीज, मैंने कहा मेरी हॉबी है स्पिरिचुअल स्टडी, और क्या बोलता। तो बोले अच्छा तुमने गीता पढ़ी है। अच्छा इंशाअल्लाह मुझे तो संस्कृत भी नहीं आती, गीता क्या पढ़नी है। तो मैंने एक बार हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन हमारे कॉलेज में किसी ने दी थी वो पढ़ रखी थी, और उर्दू में मैंने उसका इंडेक्स बना रखा था ज्ञान के बाद, यहाँ सर्वव्यापी लिखा है यहाँ। मैंने कहा हाँ जी पढ़ी है। वो एक ही किताब है जो मैंने हिंदी में पढ़ी। बोले बताओ गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है। अब मुझे पता तो है मैं बोल नहीं सकता जो दुनिया वाले कहते हैं। तो फिर मैंने कहा जी टू मी इट इज मन मना भव बस। तो कहते हैं क्या मतलब। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान कहता है मुझे याद करो, अगर पता ही नहीं भगवान कौन है तो किसको याद करेंगे। कृष्ण जी तो शरीरधारी थे, वो तो शरीर छोड़ गए, आज के भगवान को कैसे। उनको पसंद नहीं आया, चार ने सिरे ला दिया नहीं। अच्छा अब क्या करें। फिर एक कहता है अच्छा ये बताओ गीता के अनुसार एक आदमी सड़क पे जा रहा है, दूसरा उसके पीछे छुरा लेके जा रहा है, तुम देख रहे हो क्या करोगे गीता के अनुसार। मैंने कहा जी देखिए मैं मौत वौत से नहीं डरता पर मैं लॉ अपने हाथ में नहीं लेता, मैं इधर उधर देखूंगा कोई पुलिस वाला है। फिर उन्होंने ऐसे सिर ला दिया। अच्छा फिर बोले अच्छा ठीक है मान लो जिसको वो छुरा लेके जा रहा है आपका सगा भाई है, फिर आप क्या करोगे। मैंने कहा जी देखिए कोई किसी का लौकिक में भाई बनता है, कर्मों का हिसाब होता है, तो उससे मेरा ज्यादा हिसाब है, तो मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं। फिर भी मैंने गोल मोल जवाब दिया। एक कहता है जी 9 मिनट हो गए, अब इनको जाने दो। अच्छा, मैं आ गया, सिलेक्ट हो गया और रिजाइन कर दिया। अब आप सोच सकते हैं दलाई किसने, छुड़वाई किसने, और क्वेश्चन क्या पूछे। फाइनेंस मैनेजर का इंटरव्यू है, सवाल पूछ रहे हैं छुरा मारने के, बताओ। ये है बाबा की कमाल। चलो टाइम हो गया, ओम शांति।